लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अत्याचार और उत्पीड़न निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यातनाओं के उन्मूलन को सुनिश्चित करने हेतु ठोस रूप से प्रतिबद्ध रहे और पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता की गारंटी प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, दक्षिणी यूक्रेन के खेरसान प्रांत में सोमवार 5 जून को सुबह नोवा काखोव का जल विद्युत ऊर्जा प्लांट बांध के टूटने से हालात गंभीर हो गए हैं। यह बांध यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी नीप्रो पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत कर्मियों ने आगाह किया है कि बांध के टूटने से अग्रिम मोर्चे पर फंसे हजारों लोगों की जान पर जोखिम है। इस आपदा में कम से कम 16,000 लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र और साझेदार संगठनों ने पेयजल, जल स्वच्छ करने की सामग्री समेत प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। प्राप्त समाचारों के अनुसार हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है और बांध का पानी अनेक नगरों में जमा हो गया है। इस बांध पर स्थित जलाशय से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़ापोरिज़्या प्लांट को ठंडा करने के लिए जल आपूर्ति की जाती है। हिंसक टकराव के शुरुआती दिनों में इस संयंत्र पर रूसी नियंत्रण के बाद से ही इसकी सुरक्षा के प्रति चिंताएं व्यक्त की गई थी। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने मंगलवार 6 जून को न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद कक्ष से बाहर पत्रकारों को बताया कि इस आपदा की वजह जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास स्वतंत्र स्रोत से प्राप्त जानकारी नहीं है, मगर एक बात स्पष्ट है कि यह यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का एक विनाशकारी नतीजा है। उन्होंने कहा, इसके प्रभाव बड़ी संख्या में नगरों व शहरों में देखे जा सकते हैं। महासचिव ने यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन महासभा के प्रस्तावों के अनुसार न्यायसंगत शांति की अपील की है। त्रिनिदाद और टोबेगो के राजनयिक श्री डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, जो सितंबर 2023 में शुरू होकर एक वर्ष तक चलेगा। राजदूत श्री डेनिस फ्रांसिस को कूटनैतिक क्षेत्र का लगभग 40 वर्षों का अनुभव है और वो सितंबर में शुरू होने वाले 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख नीति निर्माता संस्था की अध्यक्षता संभालेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
राजदूत डेनिस फ्रांसिस को गुरुवार को न्यूयॉर्क स्थित यूएन महासभागार में एक समारोह के दौरान महासभा अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया। दुनिया के 193 देश यूएन महासभा के सदस्य हैं और उन सभी को अध्यक्ष के चुनाव के लिए समान वोट हासिल हैं। महासभा के कर्तव्यों में यूएन महासचिव की नियुक्ति की जिम्मेदारी भी शामिल है, जिसे वह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंजाम देती है। यूएन महासभा संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक बजट भी स्वीकृत करती है। राजदूत डेनिस फ्रांसिस ने अपने चुनाव के बाद कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान सार्थक संवाद के प्रोत्साहन और उसकी सुलभता को प्राथमिकता पर रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो शांति, समृद्धि, प्रगति और सततता के आधारों को मजबूत करने के लिए मौजूदा और नए तरीकों को संभव समाधानों के साथ आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं।
इट इज माई होप टू ब्रिंग फॉरवर्ड विथ योर हेल्प एंड सपोर्ट अ रिन्यूड एटमॉस्फेयर ऑफ कंसिलिएशन Cooperation and shared commitment.
ये मेरी आशा है कि मैं चुनौतियों का सामना करने के लिए आपकी सहायता और समर्थन से सुलह, सफाई, सहयोग व साझा प्रतिबद्धता का एक नया माहौल आगे बढ़ाऊंगा और महासभा के लिए उपलब्ध हर एक अवसर का लाभ उठाऊंगा। राजदूत डेनिस फ्रांसिस के शब्द। उन्होंने अपने जीवन और सफलता में शिक्षा की महती भूमिका के बारे में भी बात की। और साथ ही ये सुनिश्चित किए जाने की जरूरत को भी रेखांकित किया कि सभी लोगों को टिकाऊ विकास लक्ष्यों यानी SDGs के अनुरूप शिक्षा प्राप्ति का अवसर अवश्य मिले।
संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि म्यांमार में मई में आए घातक चक्रवाती तूफान मोका से हुई बर्बादी के 2 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मानवीय राहत की उपलब्धता और सुलभता अनिश्चित है। बीमारियां फैल रही हैं और एक विशाल खाद्य संकट का जोखिम मंडरा रहा है। प्रभावित प्रांतों में लगभग 16 लाख लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
म्यांमार के राखिन, चिन, मैग्वे, काचिन समेत अन्य प्रांतों में लगभग 16 लाख लोगों को तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है। इन इलाकों में चक्रवाती तूफान मोका के दौरान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिससे घरों, खेतों, मवेशियों को भीषण नुकसान हुआ है। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के रेजिडेंट प्रतिनिधि तितोन मित्रा ने सर्वाधिक प्रभावित राखिन प्रांत की राजधानी सितवे से जानकारी देते हुए कहा, समय बहुत ही अहम है। हम देख रहे हैं कि खाद्य भंडार पूरी तरह खत्म होते जा रहे हैं। मॉनसून कुछ ही हफ्तों में आने वाला है। जल संसाधनों को दूषित होने से बचाना होगा या वैकल्पिक स्रोत ढूंढे जाने होंगे। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित समुदायों तक सहायता पहुंचाने के लिए रास्ता सुनिश्चित किए जाने का भी आग्रह किया। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के लिए $33 करोड़ की एक अपील जारी की थी। देश में कुछ सहायता का पहुंचना शुरू हुआ है, मगर फिलहाल ये पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के लिए। फिलहाल जो मदद म्यांमार पहुंची है उसे सैन्य देखरेख में वितरित किया जा रहा है, क्योंकि नागरिक समाज संगठनों और UN एजेंसियों के पास सीमित सुलभता है। UN अधिकारी ने कहा कि सैन्य प्रशासन के पास एक राहत वितरण योजना भेजी गई है, जिसे जल्द स्वीकृति दी जानी आवश्यक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य नागरिक समाज साझेदारों के लिए निर्बाध आवाजाही संभव हो सके। उन्होंने कहा कि ये समय मानवीय सहायता के राजनीतिकरण या उसके सैन्यकरण से बचने का है।
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत मालाकल में तैनात भारतीय शांति रक्षक मेजर रितु मलिक का कहना है कि हिंसक टकराव और असुरक्षा से जूझ रहे देशों में UN शांति रक्षक शांति स्थापना के विशाल लक्ष्य को पाने में बूंद बूंद अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय UN शांति रक्षक दिवस की थीम है, शांति शुरू होती है मुझसे। मेजर रितु मलिक के लिए इस थीम की क्या अहमियत है?
पीस बिगिंस विद मी से मैं यही समझती हूँ कि आप चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से ताल्लुकात रखते हैं, जहां पर मे भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहां पर शांति है, बट आप फिर भी कुछ छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। और इसकी शुरुआत होती है खुद से। यहाँ आकर मुझे ये सीखने को मिला कि पीस जो है, पीस एक बहुत बड़ा टर्म है, बट इसके नीचे बहुत छोटी छोटी गतिविधियां हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगी साउथ सूडान के लिए। UN का सक्सेस सिर्फ इस फैक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है कि साउथ सूडान वॉर जोन से लेकर पीस तक गया। मेरे ख्याल से UN का जो सक्सेस है वो ये भी है कि जब हम बाहर पेट्रोल के लिए जाते हैं तो हमें देखकर कुछ महिलाओं को सेफ फील होता है। इस पर भी डिपेंडेंट है कि एक बच्चा हमें देखता है, एक छोटी लड़की हमें देखती है तो हमें आइडियलाइज करती है कि अगर ये महिला सशक्त हो सकती है तो मैं भी हो सकती हूँ। तो हम सब पीस कीपर्स अपना छोटा छोटा एक रोल निभाते हैं, अपने आप से शुरुआत करते हैं उस पीस के बड़े सागर में अपनी एक बूंद भर कॉन्ट्रीब्यूशन से, और ये कामना करते हैं कि ये एक दिन सच होगा और द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस।
आज के सभी विषय UN हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
कृपा वरदान अनुग्रह दो, ज्योतिर्मय मुझे कर दो, ज्योतिर्मय मुझे
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन स्थित परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने संत पापा फ्रांसिस की सर्जरी के बाद उनके स्वास्थ्य लाभ पर एक अपडेट जारी कर गुरुवार अपरांत बताया कि वे ठीक हैं तथा इस वक्त आराम कर रहे हैं। बताया गया कि संत पापा प्राप्त किए गए संदेशों का भी जवाब दे रहे हैं, जिसमें मार्च माह में जमेली पॉलीक्लिनिक के बाल चिकित्सा वार्ड में बपतिस्मा लेने वाले एक शिशु का परिवार भी शामिल है। गुरुवार को परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने एक वक्तव्य में लिखा, संत पापा फ्रांसिस ने अपना पूरा दिन विश्राम कर व्यतीत किया। ऑपरेशन के बाद संत पापा की देखरेख में लगे चिकित्सीय अधिकारियों के अनुसार उन्हें तरल आहार दिया जा रहा है, उनका रक्तचाप और श्वसन पैरामीटर स्थिर हैं और सब कुछ नियमित प्रतीत हो रहा है। कॉर्पस डोमिनी यानी प्रभु ख्रीस्त की देह और रक्त के महापर्व के दिन अपरांत संत पापा ने पवित्र यूक्रिस्ट भी ग्रहण किया। कई शुभकामना संदेशों के बीच नन्हे मिगुएल आंजेल के परिवार के स्नेह से वे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं, जिसे 31 मार्च को संत पापा फ्रांसिस ने अस्पताल के बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी और न्यूरोसर्जरी वार्डों की यात्रा के दौरान बपतिस्मा प्रदान किया था। मिगुएल के परिवार ने संत पापा को एक पोस्टर भेजा है, जिसमें उनके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करते हुए लिखा है, आइए हम एक साथ दोपहर बिताएं, आप हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा हैं। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु एक पोस्टर द्वारा दर्शाए गए स्नेह से प्रभावित होकर संत पापा फ्रांसिस ने इस संदेश के लिए मिगुएल की मां पेरू की मूल निवासी मार्चेला बारचेना को व्यक्तिगत रूप से फोन कर धन्यवाद ज्ञापित किया। मार्चेला ने पत्रकारों को बताया कि संत पापा फ्रांसिस के अस्पताल में भर्ती होने और उनकी सर्जरी की खबर सुनते ही उन्होंने उनके लिए प्रार्थना शुरू की तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए एक पोस्टर तैयार किया ताकि उन्हें भेजा जा सके। उन्होंने बताया कि संत पापा को फोन पर यह कहते सुनने पर कि मार्चेला, मैं संत पापा फ्रांसिस हूं, मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि वे स्पानी भाषा बोल रहे थे। लगा कि दिल बाहर आ गया और फिर वापस आ गया। मैंने कहा, हेलो संत पापा। उन्होंने मुझे बताया कि वे अस्पताल में हैं। मैंने एक दिन उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की और पूछा कि यदि संभव हो तो हम एक साथ एक दोपहर बिता सकते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मुझे खुशी होगी। मार्चेला ने पत्रकारों से कहा कि वह अपने प्रियजनों के साथ एक दिन संत पापा को देखना चाहती हैं। उसने कहा, हमारा एक छोटा सा विनम्र परिवार है, लेकिन एक बड़ा परिवार भी है, क्योंकि हम कई सदस्य हैं। तथापि किसी भी चीज से अधिक हम एक गरीबी और संयुक्त परिवार हैं। संत पापा फ्रांसिस को उनकी सर्जरी के उपरांत स्वास्थ्य लाभ का समय देने के लिए परम धर्म पीठीय प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि कुछ दिनों के लिए उनके समस्त कार्यक्रमों को निलंबित कर दिया गया है। यह भी बताया गया है कि संपूर्ण विश्व से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु शुभकामना संदेशों का आना जारी है। घोषणा में कहा गया कि एहतियाती उपाय के रूप में संत पापा की सभी निर्धारित मुलाकातों को 18 जून तक निलंबित कर दिया गया है। वेटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी संत पापा की शल्य चिकित्सा के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संत पापा कुछ दिनों तक आराम करेंगे तथा कुछ दिनों के लिए उनकी गतिविधियों का निलंबन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने का मौका देगा। इसी बीच वेटिकन में संत पापा फ्रांसिस के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ढेरों संदेश और प्रार्थनाएं आ रही हैं। रोम के कैथोलिक लोकधर्मी लोकोपकारी समुदाय संत इजिदियो ने बुधवार को जारी बयान में संत पापा फ्रांसिस के प्रति अपना स्नेह और सामीप्य व्यक्त किया। कहा गया, संत पापा की शल्य चिकित्सा की सफलता और उनके स्वास्थ्य की शीघ्र बहाली के लिए संपूर्ण कैथोलिक कलीसिया के साथ प्रार्थनाओं में शामिल होकर संत इजिदियो समुदाय एक मेषपाल के रूप में अपनी प्रेरिताई के पूर्ण अभ्यास में जल्द ही पुनः लौटने हेतु संत पापा की प्रतीक्षा कर रहा है, जो विश्व के इतने सारे लोगों के लिए एक अनमोल संदर्भ बिंदु है। इसी प्रकार इताली धर्माधीक्षीय सम्मेलन के एक बयान में कहा गया, परीक्षा की इस घड़ी में धर्माधीक्षीय सम्मेलन के समस्त धर्माध्यक्ष संत पापा के करीब हैं तथा इटली के सभी कलीसियाई समुदायों को अपनी प्रार्थनाओं द्वारा उन्हें समर्थन देने हेतु आमंत्रित करते हैं। साथ ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के काम को प्रभु ईश्वर के सुपुर्द करते हैं। इटली के अरेत्सो प्रांत के रोंदिनो नामक नगर में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के उपलक्ष्य में इतालवी कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष बोलोनिया के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल मत्तेओ ज़ुप्पी ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए संवाद एकमात्र रास्ता है। इटली के रोंदिनो नगर में इन दिनों यू टॉपिक फेस्ट अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जारी है जो रविवार 11 जून को समाप्त होगा। संत पापा फ्रांसिस द्वारा यूक्रेन प्रेषित किए गए कार्डिनल ज़ुप्पी अभी कुछ ही दिनों पूर्व यूक्रेन में अपने शांति मिशन से लौटे हैं। शांति के गढ़ रूप में पहचाने जाने वाले रोंदिनो नगर में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेने वाले युवाओं को संबोधित कर कार्डिनल ज़ुप्पी ने कहा, निश्चित रूप से ये युवा लोग हमारा वर्तमान है, न केवल भविष्य। यहाँ रोंदिनो में इतना इतिहास है, इतनी बैठकें, मुलाकातें और परस्पर बातचीत है जो कि युद्ध के विपरीत है। संघर्ष न केवल तब होता है जब यह शुरू होता है, बल्कि यह तब भी होता है जब हम एक दूसरे को समझते नहीं, एक दूसरे को सुनते नहीं, एक दूसरे की उपेक्षा कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। जबकि यहाँ रोंदिनो में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। यहाँ शांति का बोलबाला है और आशा है कि यहाँ से शांति सर्वत्र फैल जाए। रोंदिनो में रूसी और यूक्रेनी युवाओं के सह अस्तित्व के बारे में पूछे जाने पर कार्डिनल ज़ुप्पी ने रेखांकित किया कि यह दर्शाता है कि कैसे भविष्य एक साथ रहना सीखने में निहित है, जैसा कि संत पापा फ्रांसिस अपने विश्व पत्र फ्रतेली तूती में लिखते हैं। उन्होंने कहा, कभी कभी यह इतना थकाऊ होता है कि असंभव प्रतीत होता है, लेकिन संत पापा फ्रांसिस बुद्धिमानी से हमें याद दिलाते हैं कि जो अपने आप को बचा सकता है वह अपने को बचाए मानसिकता सभी के खिलाफ होती है और इस तरह से हम सभी हार जाते हैं। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि एक दूसरे में रुचि रखना मौलिक है, क्योंकि केवल एक साथ मिलकर ही हम विपत्ति से बाहर आ सकते हैं। एथलेटिका वाटिकाना और विया पानिस नामक खेल समूहों के लगभग 60 धावक रविवार 11 जून को रोम की कैंटीनों की ओर एकजुटता की दौड़ में साथ होकर सबसे कमजोर लोगों को मदद की पेशकश करेंगे तथा मध्याह्न 12 बजे रोम के जमेली अस्पताल में भर्ती संत पापा फ्रांसिस के साथ देवदूत प्रार्थना में एकजुट होंगे। शांति के लिए प्रणाम मरिया प्रार्थना, संत पापा के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना तथा रोटी पर आशीर्वाद की प्रार्थना हेतु एथलेटिका वाटिकाना और विया पानिस के 60 धावक संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण से विया पानिस यात्रा का शुभारंभ करेंगे तथा लगभग 10 किलोमीटर की दौड़ के बाद मध्याह्न 12 बजे रोम के जमेली अस्पताल पहुंचेंगे। इसका उद्देश्य खेलों को वास्तव में भ्रातृत्व प्रेम और एकात्मता के अनुभव रूप में प्रस्तुत करना है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।